devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Granthara Srimad Bhagavatam Dasam Skand Adhyay Pratham Bhagavan Sri Krishna Ka Avatar Parichay Shlok Sankhya 14. Suto Vacha Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vaiyasakihi Saha Bhagavan Atha Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalmasaknam Vyahartum Arabhata Bhagavata Pradhanaha Suto Vacha Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vaiyasakesa Bhagavam Natha Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalmasagnam Vyaharatumarabhata Bhagavata Pradhana Sotuvacha Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vaiyasakesa Bhagavanatha Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalmasagnam Vyaharatumarabhata Bhagavata Pradhana Sotuvacha Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vaiyasakesa Bhagavanatha Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalmasagnam Vyaharatumarabhata Bhagavata Pradhana Boliye Utaha Uvacha Sut Goswami ne kaha Evam Is prakar Nishamya Sunkar Bhrigunandana He Bhrigunvansh ke putra Shonak Sadhuvadam Shubha Prashna Vaiyasakihi Vyas Dev ke putra Sukhdev Goswami Saha Vah Bhagavan अत्यंत शक्तिशाली अथ इस प्रकार विष्णुरातम विष्णु द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज को प्रत्यर्च सादर नमस्कार करके कृष्णचरितम कृष्ण कथा को कलिकल्मसग्नम इस कलयुग के कष्टों को कम करने वाली व्याहरतुम वर्णन करने के लिए आरभत शुरू किया भागवत प्रधान शुद्ध भक्तों में प्रमुख सुखदेव गोस्वामी ने अनुवाद मेरे पीछे बोलिए सूद गोस्वामी ने कहा हे भृगु पुत्र शौनक कृषि परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृष्ण चरितम कलिकल्मषखनम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की राम बाण औषधि हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये दो शब्दों को ले रहे हैं। श्लोक में बहुत से शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है दो शब्द वो प्रभुपाद ने लिए हैं, और इन्हीं शब्दों पर ही पूरा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से शब्द हैं? कृष्णचरितम कलिकल्मषखनम, एक साथ हैं ये, ये तीसरी पंक्ति में है। कृष्णचरितम कलिकल्मषखनम, कृष्णचरितम का मतलब कृष्ण कथा, और कलिकल्मषखनम कलि कलयुग और कल्मष पाप और घ्नम घ्न मतलब नष्ट करने वाला। जो कृष्ण कथा है वो कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है, इसी पर ही पूरा तात्पर्य है। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत व्यवहारिक है। नहीं तो विद्वत्ता अगर जो है दिखानी हो तो बहुत से शब्द हैं जिनकी व्याख्या की जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करते हैं कलयुग की भ्रमित जनता को रास्ता दिखाने के लिए। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य हैं विद्वत्तापूर्ण तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है, शिक्षा पूर्ण है। शिक्षा जो है प्रभुपाद जी देना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है और वे अपना हित नहीं जानते कि किस प्रकार से उनका हित होगा। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा क्या है, हितकारी हैं। कलयुग में लोग बहुत अज्ञान में फंसे हैं, इसलिए इन दो शब्दों पर प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य लिखते हैं और क्या कहते हैं कि विशेषकर इस कलयुग में, इस कलयुग के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की राम बाण औषधि है। राम का बाण, राम का बाण जब छूटता है तो राक्षसों की सेना का विनाश होता है, राम बाण। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण का चरित्र है वो कलयुग में जैसे राक्षसों की सेना है, उसी प्रकार से कलयुग के पाप हैं, बहुत भारी जो है ना संख्या में कलयुग में पाप हो रहे हैं। तो मिटा नहीं सकते कलयुग के पापों को, आप मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण कथा है इसके द्वारा ही कलयुग के पाप मिट सकते हैं, जैसे राम का बाण है और राक्षसों की सेना को नष्ट करता है, मिटाता है। तो इसको जो है समझना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी पर जो है मतलब जोर दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती है। कलयुग के लोग बहुत थोड़ी आयु के हैं, तो आप जानते हैं कि सतयुग में आयु सामान्य रूप से कितनी थी, 1,00,000 साल, और त्रेता में सामान्य आयु 10,000 साल, और द्वापर में 1,000 साल सामान्य आयु थी, और कलयुग में 100 साल, वो भी मुश्किल है और घटती जा रही है, 100 से घटती जा रही है अल्पायु। और इसके अलावा ये भी है कि कोई पैदा होते ही मर जाए, दूसरे युगों में ऐसा नहीं होता था, पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना, वो शोर हो जाता था, पूरे राजा के दरबार में शोर हो जाता था कि ये कैसे होगा। जैसे कि भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण ने शोर मचाया हाँ, कि मेरे होते हुए मेरा पुत्र कैसे मर गया लेकिन अभी कलयुग में है ना, कौन शोर मचाए, ये सब हो रहा है और खुद ही माता पिता मार रहे हैं बच्चों को, तो अल्पायु और वो भी अनिश्चित है, वो थोड़ी सी आयु भी निश्चित नहीं है। परीक्षित महाराज की आयु 7 दिन की है तो निश्चित तो है, लेकिन कौन कह सकता है कि 7 दिन जो है आप जीवित रहेंगे, कोई नहीं कह सकता है कि 7 दिन जीवित रहेंगे। लोग चलते चलते अचानक ही दिल में दर्द हुआ और मर जाते हैं, कुछ पता नहीं है ना। अल्पायु हैं कलयुग में लोग, अल्पायु हैं और उनमें कृष्ण भावनामृत की संस्कृति नहीं पाई जाती है। फिर यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रामाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं, जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते हैं। वो क्या, वो खुद ही भगवान बन जाते हैं, कि हम भगवान हैं, हमारे शरण लो तो तुम भी भगवान बन जाओगे। जो कृष्ण है वो भगवान है, जो माम अजम अनादिम, भगवान अजन्मा है, अनादि है कृष्ण, ऐसे भगवान हैं, तो उनको छोड़ करके वो सबको भगवान बनाने में लगे हैं। तो ऐसे अप्रामाणिक स्वामी हैं जो भ्रांत करते रहते हैं और कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। अगर आपकी कृष्ण कथा में रुचि है तो भी वो खत्म कर देंगे, कृष्ण कथा में रुचि भी खत्म कर देंगे। तो ये क्या है, इसको प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्य। कलयुग में ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से व्यक्ति को ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कृष्ण कथा की जो संस्कृति या जो रुचि है आपके अंदर वो भी खत्म कर देंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसीलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। जैसे कि अमेरिका में, रूस में कहाँ कृष्ण कथा थी, कहाँ कृष्ण कथा थी, भारत से कितने स्वामी गए, किसने कृष्ण कथा दी, प्रभुपाद के अलावा। प्रभुपाद ने सौभाग्य दिया, सौभाग्यशाली बनाया लोगों को, लेकिन वे जो भारत से और स्वामी गए थे उन्होंने कृष्ण कथा नहीं दी, है ना। तो इस तरह से ये दुर्भाग्य है कलयुग में कि बहुत पाखंड फैला हुआ है और इसलिए विपत्तियां, दुर्भाग्य और विपत्तियां, इसलिए विपत्तियों से भी घिरे हुए हैं। दुर्भाग्य है कि कृष्ण कथा नहीं मिलती है और उस दुर्भाग्य के कारण क्या होता है, कई प्रकार के संकट मिलते हैं, विपत्तियां, विपत्तियों से ग्रस्त रहते हैं। श्रील व्यास देव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कली कलमसग्नम नारद मुनि के आग्रह पर श्रीमद् भागवत लिखा। ये कृष्ण चरित्र जो है वो वास्तव में क्या है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत है कृष्ण चरित्र। ये दशम स्कंद ही केवल नहीं है, कृष्ण चरित्र जो है ये पूरा 12वां स्कंद जो है तो श्रीमद् भागवत ही है, ये कृष्ण चरित्र ही है। कृष्ण के चरित्र या कृष्ण के अवतारों के चरित्र या कृष्ण के भक्तों के चरित्र, ये सब कृष्ण चरित्र के अंदर आ जाता है। तो श्रीमद् भागवत, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण चरित्रम मतलब श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा है। तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, प्रभु जी क्या कह रहे हैं, इसका एकमात्र कार्य क्या है, श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में, प्रबुद्ध मतलब जगाने में, सुप्त हैं लोग, सुप्त हैं तो श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं, मनोहारी मतलब मन को हरण करने वाली, श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं वो मन को हरण करती हैं। दुर्भाग्य से कोई दे नहीं रहा है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है कृष्ण कथा दे रहा है पूरे संसार को। आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में विशेषतया प्रगत शिक्षित लोगों के बीच मान्य हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से ऐसी बुद्धि मांगी थी कृष्ण से कि जो श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं हैं वो लोग ग्रहण कर सकें और शिक्षित लोगों के बीच में लोग ग्रहण कर सकें। उनके गुरु महाराज भक्ति स्थान सरस्वती महाराज का यही आदेश था कि शिक्षित और अंग्रेजी भाषी लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जाए। आगे इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है और महाराज परिषद को विष्णु रातन। हाँ, अब इसके बाद दो शब्द और लिए हैं। सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या है? भागवत प्रधान। भागवत प्रधान, भागवत प्रधान का मतलब क्या? भक्तों में श्रेष्ठ है। भागवत जो है, भागवत के दो अर्थ होते हैं, एक भागवत है भक्ति रस शास्त्र और एक भागवत है भक्ति रस पात्र। तो भक्त का मतलब है, भागवत का मतलब है भक्ति रस का शास्त्र और भक्ति रस का पात्र। भक्ति रस के पात्र जो भक्ति रस का आस्वादन करते हैं, है ना, पात्र हैं तो सुखदेव गोस्वामी। और भागवत प्रधान का मतलब है श्रेष्ठ है, भक्तों में श्रेष्ठ है, ये शुद्ध भक्तों में प्रमुख सुखदेव गोस्वामी प्रधान। महाभागवत, तो 12 महाभागवतों में से एक सुखदेव गोस्वामी। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं और परिषद महाराज को क्या कहा है? विष्णुरातम, विष्णुरात। तो विष्णुरात का मतलब क्या है? विष्णु द्वारा रक्षित। हाँ, रात का मतलब है रक्षित, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई, कहां? गर्भ के अंदर। अश्वत्थामा के अस्त्र से विष्णु के द्वारा जिस बालक की रक्षा हुई उसको कहते हैं विष्णुरात, है ना। तो विष्णुरात है परिषद महाराज को। और ये श्लोक कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परिषद कृष्ण के महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी भी महान साधु पुरुष तथा कृष्ण के महान भक्त थे। क्योंकि विष्णु ने साक्षात जिसकी रक्षा की, केवल ऐसे नहीं कि भगवान रक्षा करते हैं सबकी रक्षा करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि साक्षात कृष्ण ने रक्षा की परीक्षित की। कृष्ण तो किसी की रक्षा कर सकते हैं इच्छा मात्र से, है कि नहीं? कृष्ण को किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, वो इच्छा ही करें कि अगर तो किसी की भी रक्षा कर सकते हैं, और जगत की रक्षा कर रहे हैं अपनी इच्छा से ही। नहीं, परीक्षित की रक्षा की थी केवल इच्छा से नहीं, बल्कि स्वयं परीक्षित की परिक्रमा कर रहे थे, भगवान रक्षा कर रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। और इतने नहीं, परीक्षित देख भी रहे थे, परिचय नहीं दिया भगवान ने परीक्षित को कि वे कौन है और किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये भगवान ने नहीं बताया परीक्षित को। ये परीक्षित ने देखा कि कोई पुरुष है जो मेरे चारों ओर घूम रहा है और ब्रह्मास्त्र का जो तेज है, जो असह्य अग्नि है, उसको शांत कर रहा है। अग्नि की पीड़ा तो अनुभव कर रहे थे परीक्षित महाराज, तो उस पीड़ा को शांत कर रहे थे भगवान। तो परीक्षित ये नहीं समझे कि कौन पुरुष है ये, लेकिन उनको ये पता चला कि ये कोई पुरुष जो है मेरी रक्षा कर रहा है और चारों ओर घूम रहा है। गत आत चक्रो, पिछले श्लोकों में किसी श्लोक में परीक्षित महाराज ने कहा कि गत आत चक्रो, हाँ, द्रोणस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना। द्रोणी, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अस्त्र से विप्लुष्टम इदम मदंगम, मेरा शरीर तो नष्ट हो चुका था। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कुरु वंश और पांडव वंश का जो है ना संतान बीज, ये मेरा शरीर था। कौरव वंश की भी संतानें नष्ट हो गई और पांडव वंश की भी संतानें नष्ट हो गई, तो संतान का बीज जो कौरव वंश का पांडव वंश का था वो मेरा शरीर था, और वो भी अश्वत्थामा के अस्त्र से नष्ट हो चुका था। जुगो कुक्षिप गत आत चक्रो, तो चक्र लेकर के जिन्होंने कुक्षी में प्रवेश किया और जुगो रक्षा की, मातुश्च में यहां शरणम गदाया, तो क्यों गर्भ के अंदर आकर के मेरी रक्षा की? मेरी माता ने उनकी शरण ली थी। इस तरह परीक्षित महाराज को विष्णुराज कह रहे हैं और प्रभुपाल लिखते हैं, हाँ, इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। जो परीक्षित महाराज हैं वो कृष्ण कथा का आदर कर रहे हैं, कृष्ण कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए शब्द है साधुवादम एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। परीक्षित महाराज के साधुवाद को सुन करके, इस प्रकार परीक्षित महाराज के साधुवाद को सुन करके, साधुवाद परीक्षित महाराज ने साधुवाद दिया सुखदेव गोस्वामी को। नौ स्कंद तक की जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई और अब जो और नवे स्कंद के अंतिम अध्याय में कृष्ण कथा को संक्षेप से सुनाया परीक्षित महाराज ने, माफ करिए, सुखदेव गोस्वामी ने, तो इसके लिए परीक्षित महाराज साधुवाद दे रहे हैं। साधुवाद कैसे दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को? साधु अंग्रेजी बोलते हैं वेल डन, जैसे कोई कार्य की प्रशंसा की जाए तो लोग साधु साधु बोलते हैं, या अंग्रेजी बोलते हैं वेल डन है ना, तो साधुवाद धन्यवाद है ना, धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को साधुवाद दे रहे हैं और ये जरूरी है, जो वक्ता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए श्रोता की ओर से कुछ शब्द होने चाहिए। परीक्षित महाराज न खा रहे हैं ना पी रहे हैं, उन्होंने विश्राम भी नहीं किया, जबकि जब वो शिकार खेलने गए थे, जब समीक ऋषि के गले में सर्प डाला था मरा हुआ, उस समय भी बहुत थके हुए थे और प्यासे थे, ले उसके बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं किया, न उन्होंने पानी पिया न कुछ खाया पिया, और फिर श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा तो कैसी हालत होगी उसकी, वो ठीक से बैठ नहीं पाएगा ना, ठीक से सुन पाएगा, उसको नींद भी आएगी, भूख प्यास नींद सब एक साथ उसको अनुभव होंगे। लेकिन परीक्षित महाराज साधुवाद दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। तो पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज ने साधुवाद जो दिया था वो क्या था, हमने कल सुना था वो श्लोक। वो कह रहे हैं साधु सहाम त्यक्त बाधते, कि मैंने जल का भी त्याग किया है तो भी मुझको असहनीय है, जो भूख है वो नहीं सता रही है, बाधा नहीं डाल रही। क्यों बाधा नहीं डाल रही? पिबंतम तुन मुखाम भोज च्युतम हरि कथा अमृतम, तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए हरि कथा रूपी अमृत को मैं पी रहा हूं इस कारण। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे जो भूख सता नहीं रही है, जबकि मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है, इसका कारण क्या है? कि तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए हरि कथा के अमृत को मैं पी रहा हूं इस कारण से। तो ये साधुवाद है, साधुवाद। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहन दे रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके, इन दोनों ने मिलकर के कृष्ण कथा प्रस्तुत की है। एक व्यक्ति अकेला कृष्ण कथा प्रस्तुत नहीं कर सकता, उससे कोई व्यक्ति चाहिए जो प्रोत्साहन दे सुनाने के लिए, एक व्यक्ति चाहिए जो कि प्रोत्साहन दे सुनाने के लिए। और परीक्षित महाराज जो है ना प्रोत्साहन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को सुनाने के लिए, वे सो नहीं रहे हैं या मरे मरे से नहीं बैठे हैं, बल्कि वो बहुत सावधानी से सुन रहे हैं। और जो कुछ भी नवे स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया कृष्ण का चरित्र, क्योंकि संक्षेप में सुनाया था, इसलिए कई प्रश्न उठे और परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न पूछे उसमें, क्योंकि वो बहुत सावधानी से सुन रहे थे। कोई व्यक्ति बहुत सावधानी से सुनता है तो फिर वो प्रश्न पूछता है ना, परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न किए कृष्ण कथा के संबंध में, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि मातुर दात अदर्हम, कि मामा होने के कारण कंस तो जो है कृष्ण के हाथों मारा जाना उचित नहीं था, कंस मामा था, मामा जी को कृष्ण ने क्यों मारा, और फिर जन्म लेते ही मथुरा से ब्रज में क्यों चले गए, है ना। तो ये सब जो प्रश्न है परीक्षित महाराज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रुचि है सुनने में, जानने में रुचि है कि नहीं। कृष्ण के प्रति उनकी इतनी आसक्ति, इतना लगाव है, जैसे कि पिता होता है अपने पुत्र के बारे में कई प्रश्न पूछता है, हैं कि वो कहाँ गए, वो कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, है कि नहीं, वहाँ खाया पिया कि नहीं खाया पिया, है ना। तो वो पढ़ाई कर रहा है तो किस क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो कोई पिता अपने पुत्र के बारे में बहुत प्रश्न करता है ना, और पूछता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, है? उसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न किए। तो कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए अच्छे श्रोता की आवश्यकता है जो प्रश्न करें, है ना। तो प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि दोनों ने कृष्ण कथा को प्रस्तुत किया और कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत दी है। और परीक्षित महाराज का जो है एक और जो विशेष योगदान है वो ये है कि वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हुए भी वे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, है ना। इससे शिक्षा मिलती है, बड़े बड़े जो नेता हैं या जो है राजा हैं, कि कृष्ण कथा सुनना कितना आवश्यक है ना। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जो है कृष्ण कथा प्रस्तुत की है मानवता के लिए, जिससे कष्ट में फंसी मानवता को बड़ी राहत मिली है, रूपा जी लिख रहे हैं। फिर श्रीमद भागवत का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, पहले स्कंद के सातवें अध्याय का छठवां श्लोक है, तात्पर्य रूपा जी श्लोक उद्धृत करते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। जीव के भौतिक कष्ट जो से व्यर्थ लगने वाले हैं यदि भक्ति के साथ जोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं। अनर्थ का मतलब कष्ट ही है जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो भक्ति योग मन भक्ति को जोड़ा जाए अगर जीवन में तो वो कष्ट जो है ना फिर घटेंगे। रूपा जी ये बता रहे हैं इस श्लोक का अर्थ है कि अपने जीवन में आप भक्ति को जोड़ेंगे तभी आपके कष्ट घटेंगे, कुछ जोड़ो तो फिर कुछ घटेगा। ऐसे अगर आप चाहो कि कष्ट घट जाए तो नहीं घटने वाले हैं। एक इधर से कष्ट घटाया तो उधर से कष्ट बढ़ गया, और इधर से इस इधर से घटाया तो उधर से बढ़ गया, वो कष्ट जो है ना चारों तरफ से घेरे हुए हैं, है ना। तो लोग जो है इस बात को नहीं समझते, लोग कष्ट से आ जाना तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कष्टों को मिटाने के लिए इधर से प्रयास करते हैं, फिर इधर से करते हैं, उधर से करते हैं, और चारों तरफ से कष्ट घेरे हुए हैं, और इधर से प्रयास किया आपने कष्ट को दूर करने का तो उधर से आ गया, इधर से आएगा, उधर से चारों साइड से कष्ट है। तो कष्टों को घटाने का जो उपाय है वो क्या है, भक्ति योग। योग माने जोड़ना, भक्ति को जोड़ो, भक्ति को जोड़ने से घटेंगे कष्ट घटेंगे, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते, इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की जो परम सत्य के विषय में है। श्रीमद् भागवत 1:7 अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि श्रीमद् भागवत का संदेश कलयुग के कष्टों से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। कलि कलमसग्नम कलयुग के पापों को दूर करने वाला है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ, अब कुछ और भी हम चर्चा करेंगे। भृगुनंदन शब्द है किसके लिए है, सौनक ऋषि के लिए, भृगु के वंश में उत्पन्न हुए हैं सौनक ऋषि, तो भृगुनंदन। और वैसे नंदन शब्द का मतलब क्या होता है, पुत्र भी है लेकिन और इसका अर्थ आनंद देने वाला, भृगुनंदन जैसे कृष्ण को कहते हैं नंदन नंदन यशोदा नंदन, तो नंदन माने आनंद देने वाला, यशोदा को आनंद देने वाले, नंद को आनंद देने वाले। इसी प्रकार से सौनक ऋषि को सुध गोस्वामी क्या कह रहे हैं, भृगुनंदन, मतलब भृगु को आनंद देने वाले। तो भृगु को आनंद दे रहे हैं सौनक ऋषि, कैसे, तो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, इसलिए उनके जो वंश के जितने पूर्वज हैं वो आनंदित हो रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो मोदन्ते पितरो, उसके जो पितरगण हैं वो आनंदित होते हैं। तो भृगु वंश को आनंदित कर रहे हैं सोनक ऋषि, इसलिए कहा है भृगुनंदन। और फिर शब्द है साधुवादम। तो हमने चर्चा की कि साधुवाद, साधु का मतलब है अच्छा, असाधु मंद बुरा, है ना। तो साधुवाद मतलब प्रशंसा के शब्द, परीक्षित महाराज की प्रशंसा के शब्द सुन करके साधुवादम। इसके बाद शब्द क्या है साधुवादम, वैयासकी। वैयासकी का मतलब व्यास के पुत्र, हाँ, सुखदेव गोस्वामी। वैयासकी शब्द कैसे बना है, व्यास से, व्यास के पुत्र हैं इसलिए वैयासकी, ये संस्कृत की व्याकरण है। वैयासकी व्यास देव के पुत्र हैं, वैयासकी। फिर इसके बाद क्या है, सा भगवान, उनको भगवान कहा है, सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा है। हम लोग तो भगवान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कहने से अभी आजकल तो बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है, इसलिए हम लोग शिव जी को भी भगवान नहीं कहते, ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा है, हम नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये शब्द जो है ना बड़ा भ्रामक हो गया है, लोग भ्रमित हो रहे हैं इस शब्द से, इसलिए हम कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। भगवाने हैं छह प्रकार के ऐश्वर्य, तो उनमें से कोई भी ऐश्वर्य अगर अधिक मात्रा में किसी के अंदर हो तो उसको भगवान कहा जा सकता है। तो शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं, तो ऋषि मुनि जो है कुछ भ्रमित नहीं हो रहे हैं इस संबंध में, भ्रमित नहीं हो रहे हैं, अभी लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं कहते भगवान। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं किस कारण से, छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य। इनमें से कौन सा है ऐश्वर्य सुखदेव गोस्वामी के अंदर, तप, तप नहीं है, छह प्रकार के ऐश्वर्य में तप नहीं है, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। और भी ऐश्वर्य हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, इन ज्ञान और वैराग्य की हम चर्चा करेंगे। भगवान जो सूत गोस्वामी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, तो उनमें ज्ञान और वैराग्य है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण। वैराग्य और विद्या यानी ज्ञान और निज भक्ति योग, वैराग्य और ज्ञान के सहित अपने भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, चैतन्य महाप्रभु ने शरीर धारण किया। तो वो भक्ति कैसी है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर जो है ज्ञान है। जब सुध गोस्वामी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं, जैसे उत्तर देना, ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी की वंदना करते हैं। तो दो श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो पहला तो श्लोक जो है उनका वैराग्य के बारे में, कि सुखदेव गोस्वामी के अंदर कितना वैराग्य है, और दूसरा श्लोक जो है ज्ञान के बारे में। मतलब वैसे पहले अध्याय के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जो कि सुध गोस्वामी के द्वारा कहा हुआ पहला श्लोक है, वो दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पहले स्कंद में। तो ये वैराग्य का है, वैराग्य कितना वैराग्य है सुखदेव गोस्वामी में, सुखदेव गोस्वामी कितना वैराग्य है ये बताते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि प्रव्रजंतम। वो तुरंत ही जैसे ही जन्म लिया उन्होंने वैसे ही जंगल की ओर चल पड़े सुखदेव गोस्वामी। कितने विरक्त हैं, जन्म लेते ही ना माता का मुंह देखा ना, पिता का मुंह देखा, अनुपेत अनुपेतम अपेद कृत्यम, और कृत्य भी नहीं कराया, मतलब जैसे संन्यास लेने के लिए कोई संन्यास दीक्षा लेता है, किसी गुरु के पास जाता है और अनुमति लेता है, ना किसी से अनुमति ली, तुरंत ही उन्होंने संन्यास ले लिया जन्म लेते ही, तो कितना वैराग्य है कि जन्म लेते ही वो जो है चल पड़े, निकल पड़े घर से बाहर। और द्वैपायन और विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन व्यास जी विरह से कातर हो रहे हैं, पुत्र के विरह से कातर हो रहे हैं, और पुत्र जो है ना इतना विरक्त है कि पिता को देख नहीं रहा है, और पिता जो है विरह से कातर होकर के बुला रहे हैं, पुत्रेति हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, व्यास जी पुत्र 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 कह करके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो पुत्र है वो पीछे नहीं देख रहा है, पुत्रेति तन्मय दया कर वो भी नहीं दूर। जो वृक्ष हैं तो वे जो है ना पिता पिता की प्रतिध्वनि कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है ना वृक्षों के माध्यम से पिता पिता की प्रतिध्वनि कर रहे हैं, या अपने स्वयं जो है ना मुख से वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तर वो भी नहीं दोस्त तम सर्वभूत हृदय मुनि मानद, उसमें सुखदेव गोस्वामी के अंदर वो शक्ति है कि किसी प्राणी के हृदय में स्थित होकर के वो बोल सकते हैं, तो वृक्षों के अंदर प्रवेश करके वो पिता के पिता की पुकार का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो ये उनका वैराग्य है। फिर ज्ञान, सुखदेव गोस्वामी के ज्ञान की वो चर्चा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कितना ज्ञान है सुखदेव गोस्वामी के अंदर, ये श्रीमद् भागवत जो है ना ये सर्वोच्च ज्ञान है, और सुखदेव गोस्वामी ने दिया है ये सर्वोच्च ज्ञान, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, या स्वान भाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप्यमतीत तीर्षताम तमोंधम संसारिणाम करुणया है पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमपयामी गुरु मुनीनाम, मुनियों के गुरु हैं व्यास पुत्र, उनके मैं शरण ले रहा हूं, जिन्होंने अध्यात्म दीपम अध्यात्म का दिया प्रदान किया है, अतीत तीर्षताम तमोंधम, जो इस अंधकार अज्ञान के अंधकार को पार करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान का ये दीपक अध्यात्म दीपक प्रदान किया है श्रीमद् भागवत, तो ये सुखदेव गोस्वामी का जो है ज्ञान है। अखिल श्रुति सारम एकम, एकमात्र समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार श्रीमद् भागवत है, तो ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को जो भगवान कह रहे हैं सुध गोस्वामी, तो इनमें दो ऐश्वर्य हैं सुखदेव गोस्वामी में, ज्ञान का और वैराग्य का है तो भगवान। इसके बाद अथ है विष्णुरातम, विष्णुरात को व्याहर तुम आरभत, मतलब कहना शुरू किया सुनाना शुरू किया विष्णुरात, तो उन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण चरित्र सुनाना शुरू किया जो गर्भ में ही भगवान के द्वारा रक्षित हुए हैं विष्णुरातम। फिर प्रत्यर्च, प्रत्यर्च का क्या मतलब है, प्रत्यर्च नहीं प्रत्यक्ष नहीं, प्रति अर्च, अर्च माने अर्चना करके पूजा करके, और प्रति माने उल्टी, उन्होंने उल्टी पूजा की परीक्षित महाराज की, प्रति माने उल्टा, अर्च माने अर्चना करके पूजा करके, तो पूजा मतलब केवल ये नहीं है कि पूजा जो है जो भगवान की होती है आरती उतारी जाती है तो वही अर्चना है, वाणी से भी अर्चना होती है, वाणों से भी पूजन होता है, तो सुखदेव गोस्वामी ने वाणी से पूजा की परीक्षित महाराज की, वाणी से पूजा करना जरूरी है, शरीर से तो पूजा हमेशा नहीं की जा सकती है, संभव नहीं है कि हमेशा पूजा की जाए शरीर से किसी की, वाणी से पूजा की जा सकती है, तो प्रति अर्च जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की पूजा की अपनी वाणी से, बहुत अच्छे शब्द प्रयोग किए, प्रशंसा के शब्द प्रयोग किए, मुनि सत्तम कहा, तो सुखदेव गोस्वामी भी प्रत्यर्च उल्टे उनकी प्रशंसा करते हैं प्रत्यर्च, तो आगे वो सुखदेव गोस्वामी के शब्द होंगे जिसमें कि परीक्षित महाराज की वो प्रशंसा करते हैं, आगे वो श्लोक होंगे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की प्रशंसा करते हैं तो वो है अर्चन पूजन, पूजा करना है ना, प्रत्यर्च प्रत्यर्च। सुखदेव गोस्वामी के अंदर इतनी विनम्रता है, वो ये नहीं सोचते कि देखो ये सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं कितना बड़ा भक्त हो गया हूं। नहीं, परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं, और ये कहकर के राजर्षि सत्तम सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तम राजर्षि सत्तम, कि तुम्हारी जो बुद्धि है अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है। वासुदेव कथायाम थे ये जाता नैसी की रति, तो भगवान की कथा में तुम्हारी नैसी रची हुई रति हुई है। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज का पूजन करते हैं सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा। तो पूजा तीन प्रकार से होती है, हा? तीन प्रकार से पूजा की जाती है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा है ना, तो मन से भी पूजा की जाती है और वाणी से भी और शरीर से, शरीर शरीर से पूजा करते हैं भगवान की हम लोग है ना। लेकिन किसी साधु की और जो है गुरु की हम मन से हमेशा पूजा करें और वाणी से तो हमेशा पूजा करें है ना। तो प्रत्यर्च, इसके बाद कृष्ण चरितम कलिकल मथग्नम, इसकी तो खूब व्याख्या प्रभुपाद ने की है तात्पर्य में। इसके बाद क्या है, व्याहार तुम आरभत, कहना शुरू किया भागवत प्रधान, जो भक्तों में प्रधान है। तो 12 महाभागवत हैं, उनमें से एक सुखदेव गोस्वामी हैं। कौन कौन से हैं, स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कीर्वयम्। ये यमराज बोल रहे हैं अपने दूतों को, और वयम सबसे अंत में अपने अपने को कहा है कि हम भी जानते हैं वयम। तो इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या हमने की है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो या कोई प्रश्न हो। हाँ, तो इनका प्रश्न है, नहीं वो ज्ञान अधूरा है, जो निर्विशेष ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान होता है। जो निर्विशेषवादी हैं तो उनके पास ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान होता है कि भाई ये माया है, ये पूरा संसार माया है, ये संसार के जो संबंध है वो सब माया है ना, हर चीज को माया। लेकिन साथ साथ जो है वो कृष्ण कथा को भी माया का समझते हैं, तो एक अज्ञान भी उसमें मिला हुआ है। आप समझ रहे हैं, निर्विशेषवादियों का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, दोनों है ना, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। आप समझे ना, तो सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी थे, माता के गर्भ में वो थे तो उनको कहा गया ब्रह्मरात, परीक्षित को कहा गया विष्णुरात, और उनको कहा गया ब्रह्मरात, मतलब ब्रह्म ज्ञान तक जो है ना उनका ज्ञान सीमित था सुखदेव गोस्वामी का। तो उनकी गर्भ के अंदर रक्षा हो रही थी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। आप समझ रहे, सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी थे, गर्भ के अंदर वे जो है जन्म नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो है सब प्रपंच है, भौतिक संसार सब प्रपंच है और इसमें जो है मैं फंस जाऊंगा, तो इसलिए वे जो है जन्म नहीं ले रहे थे। और 12 साल तक उन्होंने जन्म नहीं लिया है ना, तो वो जो है शुद्ध ज्ञान नहीं है। आप समझे, सुखदेव गोस्वामी का वो शुद्ध ज्ञान नहीं था, और विरक्ति जो है ना मतलब इतनी ज्यादा थी, विरक्ति बहुत ज्यादा, और व्यास जी इनको शुद्ध ज्ञान देना चाहते थे श्रीमद् भागवत का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा योग्य है, विरक्ति में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को वो श्रीमद् भागवत सबसे पहले लेना चाहते थे व्यास जी। सबसे पहले जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो अपने शिष्यों को भी नहीं दिया श्रीमद् भागवत, सुखदेव गोस्वामी को देना चाहते थे। ये सबसे पहले व्यक्ति को अगर देना है, कुछ देना है ना, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी को दिया, तब उनको शुद्ध ज्ञान हुआ है। तब फिर वो जो है मतलब परीक्षित महाराज के सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, और कितनी सलाम है, नहीं तो वो तो बोलते ही नहीं थे, वो ना कुछ बोलते थे ना कुछ सुनते थे ना कुछ देखते थे, अंधे बहरे गूंगे की तरह वो व्यवहार करते थे। निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब वो निर्विशेषवादी व्यक्ति जो है ना निर्ग्रंथ हो जाता है, वो सब ग्रंथ को भी माया समझता है कि ये भी माया है, ये भी प्रपंच है, ये भी है। तो कई निर्विशेषवादी ऐसे होते हैं, वो प्रभुपाद की पुस्तकों में भी कहते हैं ये भी प्रपंच है, ये भी माया है ना। फल्गु वैराग्य, उसको फल्गु वैराग्य भी कहा है। फल्गु वैराग्य समझते हैं, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य में भगवान से संबंधित वस्तु को भी जो है ना व्यक्ति त्याग देता है। प्रापंच के तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग, फल्गु वैराग्यम कथते। तो प्रपंच समझ करके भगवान से संबंधित वस्तुओं को भी त्याग देता है व्यक्ति, तो फल्गु वैराग्य है। तो सुखदेव गोस्वामी का विरक्ति तो बहुत ऊंची थी, लेकिन फिर कुछ हद तक वो फल्गु भी थी, है ना। और व्यास ही सोच रहे हैं कि इसको जो है कैसे कृष्ण कथा का आस्वादन कराया जाए, क्योंकि तो सुनता ही नहीं है, तो कुछ देखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो अपने शिष्यों को कहा उन्होंने कि एक भाव का एक श्लोक सिखाया और कहा कि इसको पढ़ते पढ़ते तुम जोर से पढ़ते पढ़ते जंगल में जाया करो, है ना। और सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो को सुनते नहीं, वो श्लोक भागवत का उनके कान में पड़ गया। और जैसे पड़ गया तो कृष्ण कथा का रस जैसे मिला तो निर्विशेष ब्रह्म का जो सुख था वो बिल्कुल तुच्छ हो गया। अब वो जो है उस ब्यास जी के उस शिष्य के पीछे भागे कि ये सिखाओ श्लोक। तो ब्यास जी ने कह दिया था कि हमारा पुत्र अगर आएगा तुम्हारे पास तो तुम उससे बात नहीं करना, हमारे पास आ जाना। तो ब्यास जी का शिष्य वो जो है भाग करके ब्यास जी के पास आए, तो सुखदेव गोस्वामी भाग करके ब्यास जी के पास आए। तब फिर ब्यास जी ने उनको बिठाया, विधिवत श्रीमद भागवत का अध्ययन कराया सुखदेव गोस्वामी को। तो आपका प्रश्न हो गया, आप कुछ बना द्वैपायन का अर्थ क्या है? ब्यास जी को द्वैपायन कहा जाता है, द्वैपायन का अर्थ क्या है?
युग में
द्वापर, द्वापर युग नहीं, द्वैपायन का ही अर्थ नहीं,
द्वापर के
नहीं। हाँ जी, द्वीप और अयन, द्वीप अयन, उनका जन्म हुआ था द्वीप में, मतलब जो सरस्वती और यमुना के बीच में जो जमीन थी पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जब उन्होंने जन्म लिया था, तो दो नदियों के बीच में जो द्वीप है उसमें उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। द्वैपायन, अयन माने स्थान और द्वीप, द्वैपायन इसलिए कहते हैं। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि जिसकी कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो उसको कोई ढोंगी गुरु मिल जाता है, वो कृष्ण कथा में उसकी श्रद्धा को खत्म कर देता है, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्भाग्य है ये, मंद भाग्य। कलयुग में जो है लोग बहुत अभागे हैं। रायणाल पायसा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्य मंद भाग्य उपद्रता है। तो ये दुर्भाग्य है कलयुग में, ये कलयुग में पैदा किया है दुर्भाग्य, है ना। और ये जो दुर्भाग्य है ये प्रभुपाद ने दूर किया है कृष्ण कथा के द्वारा, तो ये दुर्भाग्य है कलयुग में। फिर भी कसूर नहीं है, और कसूर है भी, क्योंकि ये सब जो ना कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान कितने गहना कर्मणों गति है, कर्म की गति बड़ी गहन है। कभी उसने कृष्ण से दूर होना चाहा तो वो जो है उसकी इच्छा है वो भगवान अभी पूरी कर रहे हैं। अभी वो कृष्ण के पास आना चाहता है लेकिन उसका दुर्भाग्य उसको कृष्ण से दूर कर रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक जीव की भगवान इच्छा ही जो है मतलब पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो बात दूसरी है कि पहले जब वो कृष्ण के निकट था तो उसकी क्षति कृष्ण से दूर जाने की, अब वो कृष्ण के निकट आना चाहता है लेकिन उसको दूर रखा जाता है। ये लेकिन जो भक्त हैं वो बहुत दयालु होते हैं, तो वे जो है कृष्ण कथा प्रदान करते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर करते हैं। आपका प्रश्न, कृष्ण कथा हरि कथा में क्या अंतर है? एक ही मतलब है, यहाँ कृष्ण चरित्रम कहा गया है, वहां क्या है? हरि कथामृतम पिबंतम तन्मुखाम भोजचुतम, हरि कथामृतम, है ना? तो हरि कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण के अनेक नाम है। नहीं, हरि कथा नहीं कर रहे वे, जो है हरि कथा नहीं करते, माया कथा करते हैं, आत्मकथा। अपने के अपने अपना जो है ना वो महिमा बताते हैं कि हमारी महिमा सुनो, हमारी महिमा कहो, हमारी पूजा करो, है ना? वो हरि कथा कृष्ण कथा नहीं है। और दूसरी बात है कि शिव कथा और दुर्गा कथा ये भी नहीं बताएगी शास्त्रों में। शास्त्रों में कृष्ण कथा हरि कथा बताई गई है, विष्णु कथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, शिव कीर्तन दुर्गा कीर्तन ये नहीं बताया गया, है ना? तो ये भी जो है ना दुर्भाग्य है कि लोग शिव कीर्तन करते हैं, दुर्गा कीर्तन करते हैं। शास्त्र में नहीं बताया गया है कि शिव का कीर्तन किया जाए, दुर्गा का कीर्तन किया जाए। विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु हरि, है ना? विष्णु और कृष्ण हरि, इनका जो है मतलब कीर्तन किया जाए, इनके नामों का भी कीर्तन किया जाए और इनका चरित्र का भी कीर्तन किया जाए। लेकिन शिव दुर्गा ये नहीं कहा गया है शास्त्र में। तो ये भी दुर्भाग्य है कि शिव का कीर्तन करते हैं लोग, दुर्गा का कीर्तन करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का या कोई चर्चा? हाँ, कलयुग में इष्ट प्राप्ति का साधन क्या है? सुगम साधन, वही तो चर्चा हो रही है। पूरी चर्चा तो इसी पर ही हुई, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र को है ना, साधु संग। और साधु संग में क्या होता है? कृष्ण कथा होती है। सताम प्रसंगानम वीर संविदो भवंदि हित कर्ण रसायना कथा, तो साधु संग में कृष्ण कथा होती है। भवंदि हित कर्ण रसायना कथा, हृदय के लिए रसायन और कानों के लिए रसायन, हा? जो कथाएं हैं मम वीर संविदो, कपिल भगवान के मेरे पराक्रम से संबंधित, हा? वो कथाएं होती हैं कृष्ण कथा, है ना? और जब कृष्ण कथा भी नहीं मिलती है, शुद्ध कथा नहीं मिलती है, ऐसे वक्ता नहीं मिलते हैं जो कि शुद्ध कृष्ण कथा प्रदान करें, उसमें अपनी बात ही मिलाते हैं, तो फिर ऐसे में कलियों में क्या बताया गया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे परीक्षित महाराज बहुत संकट में है, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। अब आपको अगर बताया जाए कि आपके 7 दिन में मृत्यु होगी, तो आप मन लगा सकते हो श्रवण में? नहीं लगा सकते। 7 दिन में अगर आपको मालूम हो जाए कि आपकी मृत्यु हुए है, तो आप कमन नहीं लेंगे कृष्ण कथा सुनने में। तो फिर क्या करो? यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर बहुत ज्यादा जो है आप संकट में हैं, कष्ट में हैं और व्यथित हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो आप हरे कृष्ण का जाप कर सकते हो उस समय, है ना? तो ये है उपाय। यदि छोटे से कम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये 16 नाम है कलियुग के कलमश को नाश करने के लिए, है ना? नाता पर तर उपाय सर्ववेदेश, इससे बढ़कर के और सरल उपाय समस्त वेदों में और नहीं है। इससे आप ज्यादा सरल अगर चाहते हो तो फिर नहीं है, फिर इससे ज्यादा सरल नहीं है। अच्छा, आपका
तो जब 7 दिन में मृत्यु आएगी, तो आप बोलते हो कि हरे नाम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, तो आपको ध्यान नहीं होगा, कुछ प्यार नहीं होगा नामों से, कुछ नहीं होगा, तो क्या लाभ होगा? तो अपराध हो जाएगा।
इनका प्रश्न है कि अगर 7 दिन में मृत्यु है और हमें पता चले, तो फिर हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो नाम लेने से अपराध होगा? नहीं, प्रेम नहीं होगा तो अपराध नहीं होगा, और प्रेम तो किसी का भी नहीं है, नाम में प्रेम किसी का नहीं है। प्रेम का जो धरातल है आप जानते हैं कितना ऊंचा है, श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अभी आप सीधे प्रेम की बात कर रहे हो, इन प्रेम का मतलब भी नहीं समझते। प्रेम का मतलब क्या है? अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम।
कह रहा हूं कि नाम के रटन में
तो नहीं नहीं, तो जो है हम अपराध से छूटे हैं। अपराध से छूटने का प्रयास करना चाहिए, 10 प्रकार के अपराधों से छूटने का प्रयास करना चाहिए, तो आप नामाभास में आएंगे, नामाभास की दशा में आएंगे, है ना। अजामिल जो है वो नामाभास में था, तो जो अजामिल था वो नामाभास की दशा में अपने पुत्र को नारायण बोलता था। वो तो भगवान से प्रेम की दुबार क्या, वो भगवान के बारे में कोई विचार ही नहीं कर रहा था, वो तो नामाभास, वो भी नामाभास। तो ये जो है ना मतलब विधि है। प्रभुपाद जी ने भी आंदोलन में जो है भक्तों को आध्यात्मिक नाम दिए हैं, तो इन नामों के द्वारा भी हम नामाभास की दशा में आ जाते हैं, नामाभास की दशा में आ जाते हैं। जैसे राधाचरण, तो हम राधाचरण बोलते हैं, है ना। तो ये जो है क्या, हम राधा रानी का चिंतन नहीं कर रहे हैं, राधा के चरण का चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम राधा चरण जब बोल रहे हैं तो राधा चरण ये जो भक्त हैं तो इनका चिंतन कर रहे हैं इनका, लेकिन उसमें भी जो है ना नामाभास है। इसमें बड़ी शक्ति है, पापों को दूर करने की बड़ी शक्ति है। आप समझ रहे, कृष्ण प्रिया जब हम बोलते हैं तो ना तो कृष्ण का चिंतन करते हैं ना कृष्ण की प्रिया का चिंतन करते हैं। लेकिन ये जो है जो है ना किसी भी व्यक्ति के रूप का चिंतन कर रहे हैं। अजामिल का जो है जो आसक्ति थी वो तो भौतिक आसक्ति थी अपने पुत्र में, लेकिन उसमें नाम बीच में आ गया भगवान का, तो ये भी जो है ना उसके पापों को धो रहा था। ये कितनी मतलब आश्चर्य की बात है ना। तो ये नामाभास से भी जो है ना किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया आपने, अपराधों से बच गए। लेकिन श्रद्धा, आपकी श्रद्धा तब पैदा होगी, है ना। जब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण का कीर्तन किया था हितियों के बीच में, तो क्या नाम की महिमा बताई थी? नाम की महिमा नहीं बताई थी। नाम की महिमा बताना अश्रद्धालु को अपराध है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हितियों के बीच में भगवान के नाम की महिमा नहीं बताई। लेकिन वो कीर्तन कराते थे हरे कृष्ण कीर्तन, और शब्द ध्वनि बताते, ये शब्द ध्वनि है, ये शब्द ध्वनि है, ये आपके मानसिक तनाव को दूर करेगी, ऐसे बताते। अभी चीन में भी गिरधारी स्वामी बता रहे थे जो प्रचार कर रहे हैं, तो उनको भगवान का नाम नहीं बताते हैं, ये हरे कृष्ण शब्द ध्वनि बताते हैं और आपके तनाव को दूर करेगी, इस तरह से बताते हैं। किस तरह से अपराधों से बचा करके उनको नाम दे रहे हैं। या नारा जी ने रत्नाकर नाम के डाकू को मरा मरा जब कहा था बोलने के लिए, तो भगवान का नाम नहीं बताया। अपराधों से बचा करके उनको कहा कि मरा मरा बोलो, तो वो भी नामाभास है। तो इस तरह से जो आचार्य होते हैं, योग्य आचार्य होते हैं, तो अपराधों से बचा करके हमको जो है भगवान के नाम में लगाते हैं, किसी प्रकार से नामाभास की दशा में आप आ जाएं। ठीक है, आखिरी प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। इनका प्रश्न है कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरा शरीर तो नष्ट हो गया था ब्रह्मास्त्र के द्वारा और भगवान ने फिर बचाया, तो इसके दो अर्थ हैं नष्ट होने के। एक अर्थ तो यह है कि नष्ट हो गया मतलब खत्म हो गया शरीर। महाभारत में तो ऐसा वर्णन है कि परीक्षित महाराज पैदा हुए थे मरे हुए पैदा हुए थे, और भगवान कृष्ण फिर जो है ना अपने सत्य से और अपनी तपस्या से परीक्षित को जिंदा करते हैं, ऐसा है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर ही रक्षा करते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार से कहता नष्ट हुआ, मतलब जैसे आप मान लो बहुत बड़े संकट से बच गए, है ना, तो आप क्या कहते हैं, भाई मैं तो बहुत बड़े संकट में पड़ गया था। जैसे आग में जलना ही था, बिल्कुल जलना ही था, तो आप कहते हैं मैं तो बिल्कुल जल ही गया था, आपने बचा लिया, है कि नहीं। तो जब पूरी संभावना होती है किसी कार्य की कि भाई ये जरूर हो जाएगा, तो कहते हैं भाई हो गया ये काम, आपका काम ये हो गया, हुआ तो नहीं है, पूरी संभावना है होने की, तो कहते हो गया, है कि नहीं। तो पूरी संभावना थी परीक्षित के जलने की, नष्ट होने की, तो परीक्षित कह रहे हैं कि मेरा शरीर नष्ट हो चुका था और भगवान ने बचाया, इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा आखिरी प्रश्न, इनका प्रश्न है कि क्या जरूरी था कि भगवान प्रवेश करें परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए उत्तरायगर में? हाँ, उसकी हमने चर्चा की है कि भगवान के की जरूरी नहीं है, वो तो अपनी इच्छा मात्र से ही रक्षा कर सकते हैं किसी की भी, है ना। लेकिन फिर ये जो है भगवान की विशेष कृपा है अपने भक्त पर कि वो जो स्वयं मतलब रक्षा करते हैं, है ना। योगक्षेम वहां योगक्षेम वहन करता हूँ, तो वो कोई भक्त थे ना जिन्होंने काट दिया था वहां ही, अरे भगवान को क्या जरूरत है अपने भक्त का योगक्षेम करने की, वो तो करो में हम, उन्होंने लिख दिया करो में हम कि मैं कर देता हूँ, है ना, मैं तो कर देता हूँ। लेकिन फिर भगवान ने ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं, वो गीता में जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, तो भगवान स्वयं ही जब ब्राह्मण देवता निकल गए अपने घर से बाहर, तो ब्राह्मण ही घर में थी तो घर का दरवाजा खटकाया, स्वयं जो ना अपने सिर में रख करके आए भोजन का थाल, हैं कि ये हम लाए हैं, आप समझे ना। तो भगवान स्वयं जो है ना भक्त की रक्षा करते हैं, स्वयं करते हैं, तो ये जो है भगवान का आनंद है। भगवान स्वयं आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, स्वयं आए और गरुड़ से उतर करके और अपने हाथ से पकड़ करके खींचा उस मगरमच्छ को और जमीन में लाए, और मगरमच्छ ने जब नहीं छोड़ा गजेंद्र का पैर तो अपने हाथ से चक्र से काटा, तो भगवान को ये सब क्या जरूरत है करने की। लेकिन भक्त वत्सल है भगवान, है ना, इसलिए भगवान स्वयं करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।